ओम शांति। बाप दादा के दिल के अनमोल रतन तपस्वी कुमार, सर्व कल्याण की वृत्ति भावना रखने वाले, सर्व को सहयोग देकर आगे बढ़ाने वाले अथक सेवाधारी तपस्वी मुरत, आदरणीय छोटेलाल भाई जी का इस डबल लाइट रूहानी योग तपस्या साधना भट्टी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी इस पढ़ाई का मुख्य विषय योग है और योग की गहराई को अनुभव करना और उस योग को प्रयोग करने की रुचि आप विशेष रखते हैं और इसी सेवा के लिए ही आप देश और विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। लगभग भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशियस, दुबई, लंदन आदि में भी आप विशेष योग बट्टियां कराने के लिए ही आते जाते रहते हैं। 1978 में आपको ज्ञान मिला फरीदाबाद हरियाणा से, वैसे आप राजस्थान अलवर से हैं, और 1982 में आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मधुबन में सिक्योरिटी विंग में, सिक्योरिटी प्रभाग में आप सेवा करते हैं, सिक्योरिटी की सेवा करते हैं, और जो रात्रि क्लास होती है मधुबन में उसका भी संचालन करने की सेवा आप विशेष करते हैं। आपके तीन बहनें, लौकिक तीन बहनें भी ज्ञान में चलती है, और दो बहनों के घर में गीता पाठशाला है, और तीनों बहनों के पांच लड़कियां जो है वो बाबा की सेवा में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपके जीवन की सादगी, सरलता, त्याग और तपस्या आदर्श है, अनुकरणीय है। तो आज हमारा जो विषय है योग का प्रयोग, क्योंकि जितना हम योग का प्रयोग करना सीखेंगे उतना ही हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे और बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अनुरोध है भाई साहब को कि हमें मार्गदर्शन देंगे, आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। जिसे हम याद करते हैं उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उसकी पावर, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं, और उन शक्तियों का जब हम स्वरूप बनकर उसमें स्थित होकर हम जब एक दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं, कर्म करते हैं, तो लोगों को वैसी अनुभूतियां होती हैं, अनेक कार्यों में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ विशेष बातें और अनुभव योग के प्रयोग के लिए किन किन बातों की, धारणाओं की आवश्यकता है और कैसे करें ताकि अनेक विघ्न परिस्थितियों में सहज सफलता प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो इसी संबंध में कुछ विशेष बातें, अनुभव आप सभी के सामने रखेंगे। एक सेवाधारी माता मेरे पास आई यहाँ आंगन में, जैसा कि बताया बहन जी ने, हमारी सेवा है दिन के समय सिक्योरिटी की। पूछने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। अब उस दिन कहीं हम बाहर जाने वाले थे 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो हमने माता जी को कहा, माता जी आप ऐसा करो, अभी मैं बाहर जा रहा हूं कहीं 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो आप तब तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो रोजाना 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। हम बाहर चले गए, माताजी योग करती रही 2 घंटा बैठ के, 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब हम वापस आए तो मिलने के लिए आई। पूछा, बोलो माताजी क्या समस्या है। तो माताजी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहाँ हैं, क्यों ज्यादा हैं? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी। तो योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए मुख्य रूप से 6 बातों की आवश्यकता है। उन छह बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात तो जो बताई अभी कि हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के और 2 घंटा कर्म करते हुए। अगर एक दिन का हमारा योग का चार्ट 4 घंटे से ऊपर का है तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। बातें समस्या परिस्थितियां आएंगी लेकिन आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। जैसा कि अनुभव में बताया 5 दिन में उस माता की कोई समस्या खत्म नहीं हो गई थी, समस्याएं थी तभी भी, लेकिन जो उसका पुरुषार्थ का लेवल है, योग का जो चार्ट है, उस समस्याओं के लेवल से ऊंचा अधिक हो गया, इसलिए वो बातें उसको समस्या नहीं लगी, एक साधारण सी बात बनकर रह गई। तो हम कम से कम अपने योग के चार्ट को एक दिन का 4 घंटे का अवश्य बनाए, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चय बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। निश्चय अपने आप में सब पहले, दूसरा बाबा में, तीसरा ब्राह्मण परिवार में। कैसे होगा निश्चय? निश्चय तो सभी को है, तभी तो यहां आए हैं। पहली बात, निश्चय होता है देखने से, दूसरा सुनने से भी होता है, और तीसरी बात जब हम उस चीज का प्रैक्टिकल उस व्यक्ति का अनुभव कर लेते हैं किसी बात का, तो वो निश्चय पक्का हो जाता है। इसलिए निश्चय का क्या गायन है? निश्चय बुद्धि विजयंती। अब किसी भी समस्या को लेकर आप प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसमें पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी ना मिलेगी, इस कार्य में ऐसा करूंगा या करूंगी तो ये सफल होगा या नहीं, पहले से ही कमजोर संशय का संकल्प आ रहा है तो फिर वैसा ही होगा। इसलिए बाबा ने हमको वरदान दिया, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन आत्मा हो। विजय हमारी निश्चित है, भगवान वाच, भगवान जब कह रहा है तो उसमें हमें 100% निश्चय होना चाहिए, कोई भी संशय की कमी कमजोरी वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। और उस निश्चय का स्वरूप बनकर जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं बाबा को साथ साथ में रखकर, तो 100% उसमें सफलता मिलेगी। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुख हर्ता सुख करता हूं, कहीं कोई अशांति है किसी प्रकार की तो मैं पीस हाउस आत्मा हूं, कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें तो सफलता मिलेगी। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। आप किसी को योग का दान तो दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे उसके पीछे कोई हमारा स्वार्थ समाया हुआ है, मतलब सिद्ध होने का, कार्य सिद्ध होने का बात है, तो वहां सफलता नहीं मिलेगी। निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना तो सफलता मिलेगी। पांचवी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही समय और एक ही स्थान पर जितने भी दिन बैठ के योग करना हो समय भी निश्चित और स्थान भी निश्चित होना चाहिए तो सफल जी। दिन जैसी समस्या जैसी परिस्थिति उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सप्ताह 21 दिन 11 दिन भी, जित समस्या कैसी है उस हिसाब से थोड़ा सा जोर से। अगर समय और स्थान निश्चित है तो उसमें आपको उस कार्य में सफलता सहज मिलेगी, क्योंकि समय और स्थान के साथ हमारी स्थिति भी वैसी शक्तिशाली बन जाती है। अब समय बदल गया स्थान बदल गया तो वहां स्थिति आपकी अच्छी भी हो सकती है नहीं तो डाउन भी हो सकती है। नहीं वो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ कर्म करते हुए सब कुछ करते हुए तो योग ठीक है, कर रहे हैं आप अच्छी बात है, उससे भी जमा तो होता है। और जिस किसी को पूछना हो एंड में पूछ सकते हैं क्लासेज, नहीं तो क्लास वाली पॉइंट रह जाएंगी फिर। पांचवी बात, छठी बात ना, पांच बता दी, छठी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए श्रेष्ठ स्थिति पावरफुल स्थिति शक्तिशाली स्थिति का होना जरूरी है। इन छह बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब कैसे योग का प्रयोग करें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, उसकी कुछ विशेष बातें। उसके लिए सबसे पहली बात है कि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, सकारात्मक बनाएं। कैसी भी समस्या परिस्थिति विघ्न आए लेकिन कभी भी मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलेंगे तो सफलता मिलेगी। क्योंकि हम ये नियम है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम बनते जाते हैं। हम साधारण आत्मा नहीं है, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं हमारे एक एक संकल्प के अंदर सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चले। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मन के विचारों का कैसे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, बात थोड़ी सूक्ष्म और गहराई की है, सुनकर सभी अपने आप को चेक भी करना कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है सारे दिन में, जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हर एक चेक कर लें अपने आप को, हमने लक्ष्य रख लिया निरंतर योगी या फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हो दुनियावी धंधे धोरी के इधर उधर के, कैसे उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसा ही चिंतन वैसे ही विचार वैसे ही संकल्प हमारे मन के अंदर चलने चाहिए तो आप उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे, तो उस कार्य में सहज सफलता की अनुभूति कर सकेंगे। तो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति है सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। अगर आपने मान लो कई बार गलती से अनेक जन्मों का संस्कार है ना, तो नेगेटिव विचार आ गया तो तुरंत वहां चेंज करें, क्योंकि हमारी स्थिति शक्तिशाली है पावरफुल है। और अगर वो नेगेटिव विचार आ गया और वो सिद्ध हो गया तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी, और ऐसा होता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव पहले मैं सुनाता हूं, एक नेगेटिव विचार का अनुभव ताकि हम अपने आप को उससे बचा सके। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई साहब मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, मैं आपसे उसका समाधान चाहता हूं। बोलो जी क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, कहां जाएं क्या करें, बड़ी आयु में बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं भी सोचने लगा इनको क्या जवाब दिया जाए, तो विचार आया जरूर इन्होंने कुछ गलत सोचा होगा। तो उसको पूछा कि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन आपके साथ हुआ, तो याद करो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट में सोचकर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया, इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है। जो हम बनना करना चाहते हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो देखो एक नेगेटिव विचार में वो पावर है, क्योंकि हमारी स्थिति शक्तिशाली है। तो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। एक भाई को कैंसर हो गया और अंतिम स्टेज में पहुंच गया था। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया, आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान की एक की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा के की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाई लेकिन जोर से नहीं बजाई आप। हाँ, क्यों मैंने ये बात कही? वैसे तो मोस्टली ठीक बैठे हैं लेकिन कोई कोई थोड़ा सा वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ताली बजती है तो अलर्टनेस आ जाए, चुस्ती आ जाती है, सुस्ती भाग जाती है। तो इस तरह से हम कैसी भी समस्या परिस्थिति आ जाए लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बनकर चलें, तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, कोई न कोई स्वमान का अभ्यास कर चले। जो भी बाबा ने हमें स्वमान दिए, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो, तो स्वमान से क्या होगा? हमारे विचार महान बनते हैं। विचार महान है तो स्थिति को महान शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, आजकल बहुत ऐसे हो रहा है कोई किसी से पैसे ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है, और जब नहीं मिलते तो क्या होता है, बार बार बुद्धियोग उधर ही जाते हैं, उसका ही चिंतन चलेगा क्या होगा, इतने पैसे ये वो, टेंशन हो जाता है, तबीयत पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या करेंगे इसी आत्मा को। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई का फोन आया, भाई साहब मैंने एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 25 लाख रुपए में, तो बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। मैं पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो मैंने 25 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर व्यक्ति बदल गया, कहा आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के साथ साथ दो प्लाट थे, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर, कोई मौके की जगह होगी। तो बोल नहीं मुझे तो एक नंबर ही चाहिए, एक नंबर की बात हुई थी। बोले एक नंबर नहीं मिलेगा, दो नंबर देंगे। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया, पांच दिन बाद गया, पंद्रह दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा है, प्लाट भी नहीं दे रहा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वो इस संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसने पूछा भाई सब ऐसी ऐसी मेरे सामने परिस्थिति है, मैं क्या करूं। तो हमने उनको विधि बताई कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए। ऐसे मिनका रोजाना 1 घंटा अमृत वेले 21 दिन तक योग करो, और जब योग करें तब ये भी संकल्प करना साथ में कि ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। इनका ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। उसने ऐसा योग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं कि मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 25 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन से कराया। और दूसरा, आप अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजयी बन सकते हैं सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए सुमान। एक स्वयं का ही प्रैक्टिकल अनुभव, एक बार हम बॉम्बे जा रहे थे भट्टी कराने की सेवा में, आबू रोड से ट्रेन में बैठे, सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो कुछ ऐसी लोहे की नुकीली चीज थी तो उंगली को ऐसे रगड़ कर कट कर दिया, 1 इंच उंगली कट हो गई और खून भी निकलने लगा और दर्द भी बहुत होने लगा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है, लेकिन ये देखकर हमारे मन में कोई नेगेटिव कमजोर संकल्प नहीं आया और यही संकल्प आया कि मैंने कहा ये भी किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, थोड़े में ही चुक तो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर सीट पर बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी, यही उंगली थी पीछे से ऐसे कटी थी और इसके पीछे इस तरह से ऊपर करके ऐसे पीछे से दूसरी उंगली रख ली और ये प्रयोग किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए और दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से हम अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजयी बन सकते हैं और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं। और एक ऐसा ही अनुभव, आजकल बीके भाई बहनों में बहुतों को विटामिन B12 और D3 की कमी रहने लगी है, क्योंकि वो मिलता है मांसाहार में, हम वो खाते नहीं, इसलिए उसकी कमी होने लगती है कईयों को, फिर इंजेक्शन या दवाई गोली लेनी पड़ती है। तो मुझे भी कमी थी और हर सप्ताह एक इंजेक्शन लेना पड़ता था, तो मैं एक दिन योग कर रहा था तो बाबा को योग करते करते योग में कहा, मैंने कहा बाबा ये विटामिन B12 और D3 का इंजेक्शन मैं कब तक लेता रहूंगा, आप सुप्रीम सर्जन हो तो आप इसका कुछ इलाज करो। ऐसे हमने बाबा को याद कर कहा। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे योग का प्रयोग करो। तो हमने योग का प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर, और सॉरी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा से, क्योंकि डॉक्टर सर्जन के संबंध की बात है ना, तो सुप्रीम सर्जन बाबा से विटामिन B12 और D3 के पावरफुल वाइब्रेशन मुझे आत्मा में आ रहे हैं और मुझे आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी विटामिन B12 और D3 की कमी पूरी होती जा रही है। इस तरह से हमने योग का प्रयोग करना शुरू किया। सप्ताह में 4 दिन 5 दिन करते रहे, अभी भी करते हैं बीच बीच में। और वो इंजेक्शन लिए हुए लगभग 1.5 साल होने को आया है, और अभी 2 महीने पहले हमने हेल्थ की फुल चेकिंग कराई, उसमें विटामिन B12 नॉर्मल निकला है। तो आप में से भी यदि किसी को कमी हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। हम किसी को योग का दान तो दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया उसके पीछे कुछ स्वार्थ समाया हुआ है, इससे मेरे को ये चीज मिल जाए, ये मेरा ये काम कर दे है, तो वहां सफलता नहीं मिलेगी। निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाएं तो सफलता मिलेगी। लेकिन होता क्या है ज्यादातर, मान लो कोई आपको आपका विरोध करता है, डिसरिगार्ड करता है या विघन डालता है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोगों की मन की भावना उस आत्मा के प्रति नेगेटिव हो जाती है, बदल ही जाती है। और अगर नेगेटिव भावनाएं तो वहां आप कितना भी योग कर लो, आपका योग प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना, और उसके लिए वो कब रहेंगी, ऐसी आत्मा जो आपको तंग कर रहा हो, विघन डाल रहा हो, उसके प्रति भी शुभ भावना रहे, उसके लिए चाहिए 2 बातों का होना जरूरी है। फर्स्ट ज्ञान, दूसरा योग का बल इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी, अन्यथा गलत व्यवहार को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं। तो जहां पर हमारे मन की भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी हैं, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देगी। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, रुकावट डालते हैं, कोई भाई भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो विरोध करती है, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है या विघन डालता है, तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, ये प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा के बच्चे थे, ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, वो ज्ञान में चलते थे लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना, इतना विरोध करती थी। तो वो भाई का बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के घर भी क्लास करके आ जाते थे। तो वो भाई एक बार मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर भी पांडवन में रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले, और उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि आप यदि अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही 2 बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। चाहे आपको कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलना है। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, कैसे करना है वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, जागृत होता है। तो जिस आत्मा को भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर्मन जागृत है तो उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। कैसे करना है, क्या करना है? जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, उसको अपने सामने सूक्ष्म में अमृत वेले योग में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर इस तरह से बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके उसको दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से इनका बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके 7 दिन अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर अमृत वेले योग में और उसको शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन देना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो विरोध करती थी। वो मधुबन से गए भाई अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर और ऐसे ही बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने हमने 7 दिन करने को बोला, उसने 2 दिन ये प्रयोग किया। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्टी थी तो उसने सोचा आज योग की भट्टी है तो योग की भट्टी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो शुभ भावनाओं का प्रयोग किया ही तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा इस शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से तैयार बैठे। कैसे आ गए इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किन्हों के सामने ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। और योग के प्रयोगों के लिए हम अपने आप को व्यर्थ से कंप्लीट मुक्त बनाएं, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चले, क्योंकि व्यर्थ में आत्मा की बहुत सारी शक्तियां और समय वेस्ट चला जाता है और स्थिति साधारण हो जाती है। तो अपने विचारों को सदैव समर्थ शक्तिशाली बनाकर रहे। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, तो वहां पर आंखों का काम है। आंखों ने जो देखा मन ने तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर दिया और वैसी स्थिति बन गई। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो उसके लिए 2 अभ्यास ये बहुत जरूरी है। कम से कम अगर आपने अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए आप इस भट्टी से ये 2 सौगात के रूप में ये अभ्यास लेकर जाओ। समझो सदा के लिए आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता चला जाएगा, आपका योग का चार्ट बढ़ जाएगा, पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन होता चला जाएगा, पवित्रता की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। अभी से शुरू कर दें, आज ही अभ्यास करके देख लो आप, तो आज ही आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए। ज्ञान तो है हम सबको इस बात का, कोई मैं नई बात नहीं बतला रहा, लेकिन प्रैक्टिकल अभ्यास करके कितना चलते हैं वो अपने आप में देखने की पूछने की बात है। तो इसलिए लक्ष्य दिया कम से कम 50 लोगों को। मैं ये भी कह सकता था सबको आत्मा देखो तो उससे बात थोड़ी हल्की हो जाती है, लेकिन जब हम निश्चित टारगेट रखकर कोई कार्य करते हैं, मुझे इतने दिन में ये कार्य करना है, तो फिर उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हम उस कार्य में मोस्टली सफल हो पाते हैं। इसलिए लक्ष्य रखो कि मुझे 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज्यादातर समस्या विघ्नों में कारण जो बनता है, देखने को मिलता है, वो है देह का भान और देह का अभिमान। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए बार बार इस शरीर से डिटैच, अशरीरी बिंदु बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, कम से कम 50 बार, एक एक दो दो मिनट जब स्मृति आए, ऐसा अनुभव करो कि यह शरीर मेरा धीरे धीरे जैसे कि खत्म हो गया है, लोप हो गया है, और केवल मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा बजा, और मैं आत्मा उड़ के जा रही हूं बाबा के पास वतन। कभी ऐसा अनुभव करो कि सब कुछ खत्म हो गया है, देह देह की दुनिया सब कुछ खत्म हो गया है, पूरी तरह सब विनाश हो गया और केवल मैं आत्मा और बाबा बचे, और मैं आत्मा बाबा के साथ उड़कर जा रही हूं अपने घर परम धाम को। आज नहीं कल सबको जाना तो है ही, अगर आपने पहले से अभ्यास किया होगा तो अंत में एक सेकंड में आत्मा शरीर से निकल जाएगी, और अगर ये अभ्यास नहीं किया है, कम किया है, तो आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से है, तो ऐसी आत्माओं को अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत तकलीफ होगी, आत्मा जल्दी शरीर से निकल नहीं पाएगी। इसलिए बार बार ये अभ्यास को बढ़ाएं, तो कम से कम 50 बार, तो इससे हमारा देह भान और देह अभिमान खत्म होता चला जाएगा, निराकारी बिंदु स्थिति, बीज रूप स्थिति सहज बन जाएगी, पावरफुल स्थिति। तो हम बतला रहे थे कि व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हम समर्थ विचार, शक्तिशाली विचार आपके बनते चले जाएंगे दोनों अभ्यास। और व्यर्थ चलता क्यों है, जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते हैं, तो मन के अंदर सदा ही कोई न कोई समान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना, वो बहुत बहुत जरूरी है। इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं, तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक कोई भाई सुना रहे थे, उनको एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो ऐसी उलझन में उन्होंने एक सीनियर भाई को फोन कर पूछा, भाई साहब मेरे सामने ऐसे से थोड़ी हलचल हो रही है, मुझे इंटरव्यू देने जाना है, और तो आप मुझे गाइड करेंगे क्या करना चाहिए। तो उनको बताया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया वो, तो जहां इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया, तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देख कर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो। उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे। बोल हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे। बोल हाँ जी। तो उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया, और वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया, योग पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न किया उससे कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो, तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे। बोले हाँ जी, ये इंटरव्यू हो रहा है देखो है, इंटरव्यू में ये नहीं है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न कोई भी कैसा पूछा जा सकता है, लेकिन उस प्रश्न का आप कितना एक्यूरेट और फास्ट जवाब देते हैं उस पर इंटरव्यू की सफलता ज्यादातर निर्भर होती है। तो उससे जो कुछ पूछा गया फटाफट उसका वैसा ही वो जवाब देता गया। तो उसने गीत गा दिया प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ, समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए सदा कैसी भी समस्या परिस्थिति आए व्यर्थ नहीं, शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलो, तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, एक तो हमने बताया पहले सदा अपने श्री स्वमान में रहें, दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, उसे सदैव साथी बनाकर चलो। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रही हूं जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो ये कार्य करा। तो आप वह अनुभव करेंगे जैसे कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ देता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां क्या होगा, असंभव भी संभव होता चला जाएगा, कदम कदम पर सह सफलता अनुभव होती रहेगी। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, मान लो बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना मैं सेवा कैसे करूंगी या करूंगा। लेकिन यदि आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया, तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। क्यों, कराने वाला था वो है आप, हमको तो सिर्फ निमित ही बनना है। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव, हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, 1 साल ही हुआ था उसमें मुझे मधुबन में रहते, जैसा कि बेंजी ने बताया 43 ईयर्स हो गए। तो उस समय हमारे को कुछ क्लास कराने का भाषण करने का जरा भी अभ्यास नहीं था। तो उस समय तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं बना था, जो था पांडव भवन था, सभी दादियां यहां रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे ओम शांतिवन मेडिटेशन हॉल में। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी दादी ने कहा कि आपको भाषण करना है। हमने तो चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना ना किया, क्योंकि भाषण करना आता नहीं तो हाँ भी कैसे करें, और दादी ने बोला तो ना भी कैसे करें। और मैं बाबा के कमरे में गया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा, और दादी ने बोला है भाषण करना है। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये पॉइंट स्मृति माते ही थोड़ा शक्ति आ गई, हाँ इनका ये बात ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है और सफलता पाई है, फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा शक्ति आ गई और बाबा को याद कर ये भी बोल दिया कि बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। तैयार हो गई जी, प्रोग्राम ऐसा था टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, चिट्ठी बनाकर रख दी जाएंगी, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे और उसी समय आओ चिट्ठी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही पता नहीं है। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है, सात बहने सात भाई सब नई नई, जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना, इसलिए ऐसे लोगों को ही सेलेक्ट किया गया, उनमें से एक हम भी थे। तो उस प्रोग्राम का नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग आए देखने सुनने के, और बाबा के सीजन के बीच में ये प्रोग्राम हो रहा था। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, तीन लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला, यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक तरफ पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर कहके बोल दिया, और जैसे ही ओम शांति कहके बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट से मृत्यु में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो कहीं भी कैसी भी, और उसके बाद हमारा क्लास कराने का भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया, समझो बाबा ने कला बढ़ दी। तो इसलिए कभी भी बाबा की सेवा में ना नहीं करनी है, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना है। और लास्ट पॉइंट, कर्मों की गुहे गति के ज्ञान को सदैव विमर्ज रूप में रख के चले तो स्थिति आपकी शक्तिशाली बनी रहेगी, योग के प्रयोगों में सफल हो सकेगी। ज्ञान हम सबको है, लेकिन इमर्ज रूप में न रहने के कारण उसके अनेक बात परिस्थिति समस्याओं के प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर प्रश्न उठता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और स्थिति हलचल में आ जाती है। तो कर्मों की गुही गति का ज्ञान सदैव इमर्ज रूप में रहे। क्या हमको भावनिक, तो इसके साथ साथ ड्रामा का ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट बना है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है और वही होना है, और वैसे ही आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब चुकतु होना है। अगर ये ज्ञान आपकी बुद्धि में इमर्ज रूप में रहता है तो किसी भी बात को देखकर सुनकर कभी प्रश्न नहीं उठेगा, और जो हो रहा है वही सत्य वही निश्चित है, वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतु होना है, तो फिर क्या क्यों का प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर भी उठते तो हैं बहुतों के प्रश्न हैं। तो आवश्यकता है ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलने की, क्योंकि देखो ड्रामा तो एक्यूरेट बना ही हुआ है, ऐसा नहीं कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने हमको, भगवान ने ज्ञान दिया है, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें कोई परिवर्तन की मार्जिन नहीं है। जब एक्यूरेट बना है तो फिर प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, इससे कईयों के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। एक शहर में चौराहे पर एक व्यक्ति चाय की छोटी सी दुकान करता था, बहुत मेहनत करके ईमानदारी से, और थोड़ा सा पैसा जमा होता था, रात को जब जाने लगता तो तीन चार गुंडे आते, उसको मारते पीटते, उसकी सारी कमाई छीन के ले जाते। दो दिन बीते, चार दिन बीते, 15 दिन, महीना, 2 महीना बीते, कैसे करते। वो व्यक्ति बड़ा परेशान, मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई जमा करता हूँ, ये 3-4 गुंडे लोग आके मेरे को मारते पीटते मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। जिस रूप में भी वो भगवान को मानता था, ऐसे वो भगवान को दोष देने लगा। तो एक दिन जब वो रात को सोया हुआ था तो भगवान उसके सपने में आए, जिस रूप में वो मानता था, और कहा बोलो भाई आपने मुझे याद किया है। हाँ मैंने इसलिए याद किया है कि मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई जमा करता हूँ, ये 3-4 गुंडे लोग आके मेरे को मारते पीटते मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। बोला आप जानना चाहते हो? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूं। तो उसको दिखाया, देखो आप पिछले जन्म में राजा थे और आपने राजा बनने के लिए कितने लोगों को मरवाया, कितनों को जेल में डाला, कितनों का धन लूटा, उसके बाद जाकर आप राजा बने। तो जिन लोगों का आपने धन लूटा, मरवाया, जेल में डाला, वही लोग आके आपको आज मार पीट रहे हैं, आपकी सारी कमाई छीन के ले जा रहे हैं। ये देखकर उसके मन में शांति हुई, कहा ये तो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, तो मुझे ही चुक तो करना पड़ेगा। तब उसने कहा ठीक है, मेरे कर्म का हिसाब किताब है, मैं चुक तो करूंगा, लेकिन इस तरीके के अलावा कोई और भी तरीका है कर्म का हिसाब किताब चुक तो करने का? तो भगवान जी ने कहा और भी तरीका है, तो बोल वो बताइए। तो वो तरीका ये है कि कुछ दिन के बाद आपके पास 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने आएंगे और आपको वो ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा देंगे और उस पर्चे में जो एड्रेस लिखा हो, पता लिखा हो, वहां आप जाना और वहां ज्ञान सुनना, मेडिटेशन सीखना, और ज्ञान सुन के मेडिटेशन सीख के जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो उससे आपके किए हुए पाप कर्म विकर्मों का हिसाब किताब धीरे धीरे चुकतु होता जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर भगवान जी गायब हो गए। अब वो इंतजार करने लगा, भाई कब आएंगे 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने। तो एक सप्ताह के बाद कहीं मेला या प्रदर्शनी लगी थी बाबा के ज्ञान की, तो उसको निमंत्रण देने के लिए बाबा के बच्चे आए। उसको निमंत्रण मिला, उसमें जो एड्रेस लिखा था वो देखकर वहां वो पहुंचा पर्चा लेकर, और वहां उसने ज्ञान सुना, अच्छा लगा, मेडिटेशन सीखा, कोर्स किया, मेडिटेशन सीख के और ज्ञान में चल पड़ा। ज्ञान में चल पड़ा तो कुछ दिनों के बाद वही लोग फिर से आके उसको मारपीट रहे, उसकी सारी कमाई छीन के ले जा रहे हैं, लेकिन वो जरा भी दुखी परेशान नहीं हो रहा। तो एक सप्ताह के बाद उन लोगों ने इस व्यक्ति को पूछा, भाई पहले हम आपको मारते पीटते थे तो आप बहुत दुखी परेशान हो जाते थे, लेकिन अब आप जरा भी दुखी परेशान नहीं हो रहे, क्या कारण है? बोल मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं मेडिटेशन करता हूँ। बोल कौन सा ज्ञान मिल गया है? बोल आप भी हमारे साथ चलो। तो उनको भी सेंटर पर लेकर गए, उन्होंने भी ज्ञान सुना, कोर्स किया, और वो भी ज्ञान में चल पड़े, तो सबका ही कल्याण हो गया। लास्ट में एक स्लोगन सुना के मैं पूरा कर रहा हूँ। स्लोगन ये है, कई जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, सेंटरों पर भी, घरों में भी, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस उसे याद करें, कहीं भी कोई परिस्थिति समस्या आई है दिल से उसे याद कर बता दें, वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की 3 जगह भट्टी रखी थी, अलग अलग जगह। तो एक ही दिन की भट्टी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। 4th दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए वहां की बहन जी ने 4th सेंटर पर भेज दिया। जब 4th सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया, भाई जी एक क्लास करा के और नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था, और बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। बहन जी की बात हमने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला, और मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया, क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप, ऐसे बाबा को बोल दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने आकर बहन जी की बुद्धि को थोड़ा टच किया, और बहन जी आकर कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाने क्लास कराने। वाह बाबा वाह। इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, ये स्मृति सदैव विमर्ज रूप में रहेगी तो क्या होगा, सदा अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी। तो इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ में ऐड कर योग का प्रयोग करेंगे तो अनेक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विजयी बनकर सदा आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।
बहुत सुंदर छोटे छोटे अनुभवों के द्वारा कैसे योग का प्रयोग करें आपने बहुत सुंदर रीति से समझाया। मैं समझती हूँ अभी आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी बातें या समस्याएं आती है अभी आप घबराएंगे नहीं, लेकिन आप इसी विधि से योग का प्रयोग कर सकेंगे। कर सकेंगे, किस किस को कॉन्फिडेंस आया हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।